ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप ब्रह्मलीन श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ध्यान दें, कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़े संत फकीर हुए। उस फकीर ने अपनी डायरी में लिखा कि जब मेरे पिता मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, हम दो चार भाई थे, सबको बुलाया, सबके कान में कुछ कुछ कहा, मुझे भी कहा, बेटे मेरे को तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। पास में आ, मुझे कहा, देख बेटे मेरी एक बात को मान लेना, और बात यह है, कभी कोई भी काम ऐसा करने का ख्याल आए जिसे कभी किसी दूसरे को दुख हो, 24 घंटे रुक जाना, फिर तो करना। वो संत लिखते हैं अपनी डायरी में, मैं तो बच्चा था 9-10 साल का, मेरी बुद्धि ही कितनी थी, तो मैंने अपने मरते हुए पिता से पूछ लिया, पापा 24 घंटे के बाद तो कर सकता हूं ना। तो बोले ठीक है, 24 घंटे के बाद कर सकता है। हुआ क्या, 24 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, 24 मिनट क्या, 24 सेकंड भी रुक जाएं, आपके जीवन के उस मौके का एक मोड़ अलग हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है कि जब गलत विचार मन में उठता है तो शाश्वत नहीं होता है, क्षण भर में उसका परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि उस विचार के पीछे एक असत के पीछे सद विचार आता ही होता है। हमको क्या चाहिए क्या, कहते हैं कि वो संत ने लिखा कि मैं जब बड़ा हो गया तो मेरे को लगा मेरे पिता ने मेरे को धोखा दे दिया है। क्यों धोखा क्या दे दिया, यही कहा कि तू भाई कभी मन में कोई गलत काम करने की इच्छा हो तो 24 घंटे रुक जाना। अभी 24 घंटा देखो, ध्यान दें, कोई एक इंसान आकर हमसे कहे स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो इस शिवरात्रि को नहीं अगले शिवरात्रि को ले लेंगे, अच्छी बात है। क्यों, बात क्या है, इस साल मैं सोच रहा हूं थोड़ा लंदन स्कॉटलैंड घूम करके आऊं, और एक्सप्लो फ्लोरा वर्ल्ड का एक फ्लावर एग्जीबिशन है आम्स्टरडम में हो रहा है 6 महीने के लिए, तो उसमें भी थोड़ा जाके घूम के आऊं, तो अगले साल लेने से ठीक है ना। हमको क्यों कहना है नहीं ठीक है, ठीक है, वो कभी नहीं ले सकता है, वो कभी उसका संन्यास नहीं होगा। संन्यास तो ऐसे ही है कि तिल्ली को रगड़ो और वहां पर आग हो जाए, जिस समय ये करने की भावना हो कूद पड़ो ये मैं कुछ करूं। मुश्किल क्या होती है, अच्छा कार्य करने के लिए हम उसको पेंडिंग रखते चले जाते हैं, और बुरा काम करना है तो उसी क्षण कर लेते हैं। वजह क्या, वजह हम अपने आप के आपे में नहीं है, बुरा काम एक सेकंड तक भी नहीं छोड़ते, डोंट वेस्ट अ सिंगल टाइम। किंतु जो अच्छा काम करना है सोचेंगे करेंगे देखेंगे। मैंने सुना कि एक आदमी मरा था, करोड़पति था, वो करोड़पति इंसान जो है वो बड़ा बहुत बड़ा आदमी था, लोग जानते थे उसको, वो गवर्नर के गवर्नर हाउस में ऐसे चलता था, तो सिपाही कोई उसे रोकते नहीं थे, और न केवल गवर्नर किंतु ये मुख्यमंत्री के यहां जाएगा तो भी दरवाजा खुलता था एकदम, जाइए जाइए जाइए, उसको उसको आने के लिए कह देते थे। जैसे सब मरते वो भी मर गया, तो समझता था कि मैं गवर्नमेंट गवर्नर के यहां ऐसे ही चल के जा सकता हूं, मुख्यमंत्री क्या जा सकता हूं, तो यह स्वर्ग क्या होती है। तो ऐसे ही स्वर्ग में जाने लगा, तो दरवाजे तो बंद थे, उधर खुले नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारपालों को पता ही नहीं था कि आदमी आने वाला है। सूचना होती तो खोल के रखते थे, बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया, ठोका पीटा तो द्वारपालों ने खिड़की से झांका, कहा भी क्या बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो। बोले हमको आपके लिए दरवाजा खोलने की कोई सूचना नहीं है, मेरा नाम ये है, देखो। अच्छा उधर ही रुकिए, दरवाजा ऐसे नहीं खोलेंगे, हम जाकर के थोड़ा देखते हैं, क्लर्क से पूछते हैं। वो क्लर्क के पास भी बहुत सारे किताबें थी, इधर उधर 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 सब देख लिया, कंप्यूटर भी लगाया होगा शायद, वो नहीं मिला उसको नाम। बोले आपका नाम नहीं है भाई। अरे नहीं कैसे, कहीं तो होगा। और वो जो दरवान भी रहा ये भी बोलता रहा, भाई देखो ना वो इतना हड़बड़ाया हुआ है तो कहीं तो कुछ तो शुभ होगा, कम से कम दरवाजा तो खोल दे उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक है मौका है, इसने एक बार एक भिखारी को एक पैसा दिया, हाँ तो दरवाजा खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। क्यों? बोले कि वो भिखारी को उसने पैसा नहीं दिया था, ये अपने दोस्तों के साथ में था, उस समय भिखारी ने इनसे कहा महाराज ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं, एक पैसा तो दे दो। तो उन्होंने एक पैसा दिया, क्यों? कि वो दोस्त लोग हैं उनके सामने अपनी नाक बचाने के लिए दिया था। तो जो चित्रगुप्त बैठा है वो क्या कहता था कि उसने भिखारी को नहीं पैसा दिया, अपने दोस्तों को दिया था, अपनी शान को दिया था। महाराज मैं करूं क्या? मेरे उसको बोल दो कि वो जो एक पैसा दिया था ना उसकी वजह से तुम दरवाजा ठोक पाए और खिड़की है तुम्हारे लिए खिली खुली, इससे ज्यादा कोई तुम्हारा पुण्य नहीं बनता है। और फिर भी सिर बहुत फोड़े तो उसको एक पैसा वापस दे देना, गेट आउट बोल देना। ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को थोड़ा देखो सोचो। गुरुदेव श्री स्वामी शिवान जी महाराज कहते हैं कि अपनी एक रोजनिशी रखो, दैनिक डायरी, रात में सोने के पहले लिखो, उसमें लिखो आज मैं कितना बजे उठा, बाद में लिखो उठ करके मैंने कितना ध्यान किया, कितना जप किया, कितने पाठ पूजा किए, कितना योगासन किया, कितना प्राणायाम किया, गीता स्वाध्याय किया कि नहीं, विष्णु सहस्रनाम पढ़ा कि नहीं, मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र लेखन में लिखा कि नहीं। ये चैप्टर पूरा हो गया तो दूसरा लिखो कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, उनको सबको प्यार से मिला के नहीं। गुजराती में कहावत है जेनी चाह बगड़ी एनो दाड़ो बगड़ियो, जेनी दाल बगड़ी एनु जमवानु बगड़ियो, जेनु अथाणु बगड़ियो एनु वरस बगड़ियो, जेनी बैरी बगड़ी एनु बधु बगड़ियो। ये चाह, सवेरे की जो चाह है ना वो प्रेम की होनी चाहिए, उसमें खटपट नहीं होनी चाहिए भाई। कि आप जिस समय चाय पीते हो भाई, साढ़े छह पीते हो, पौने सात पीते हो, सात पीते हो, तो आपका एक नियम है, थोड़ा पांच मिनट दस मिनट आगे पीछे हो सकता है, किंतु कभी पत्नी आपको साढ़े छह बजे ही चाय दे दे, कभी पौने सात दे, कभी सात तक ना दे, तो फिर गड़बड़ हो जाता है आपका। और कभी ज्यादा चीनी डाल दे, कभी नहीं डाले, तो ये क्या होता क्या है हमारा। अपने आप को लिखो डायरी में, आज मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ प्रेम से बैठ के हमने चाय नाश्ता किया। ये प्रेम शब्द बड़ा आवश्यक है। लिखो मैं समय से काम पर गया, काम में मैंने सबके साथ प्रेम से व्यवहार किया, गुस्सा नहीं किया, और गुस्सा किया तो क्यों किया, और करने के बाद में मैंने अपने आप को टटोला क्या, गुस्सा कितनी देर तक रहा, इसके लिए मैंने अपने आप को क्या सजा की। द सेल्फ रिस्ट्रेन वर्सेस सेल्फ इंडल्जेंस, पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी का एक पुस्तक हमने बचपन में पढ़ा था, वो केवल दुआने की किताब मिलती थी, बाद में मैं बड़े हो गए तो दो रुपए की मिलती थी, आजकल मिलती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। सेल्फ रिस्ट्रेन वर्सेस सेल्फ इंडल्जेंस, मैंने जो करतूतें की है उसके सामने मुझे, मैंने अपने आप दी हुई सजा, सजा दूसरा कोई क्या देगा, मैं अपने आप को टटल हूं, अपने आप को सजा दू। मैंने झूठ बोला क्या, क्यों बोला, मैंने इसके लिए अपने आप को क्या सजा दी। फिर मैंने जो काम के लिए 8 घंटा बैठता हूं उसमें वफादारी से काम किया कि नहीं, कोई चोरी तो नहीं की, किसी से छल तो नहीं किया, किसी से दगा तो नहीं किया। लिखो, रोज लिखो अपनी एक डायरी में, प्रतिदिन लिखो, किसी को बताने के लिए नहीं, से टॉप सीक्रेट प्राइवेट। जैसे कि हमारे भारत देश के ये बड़े बड़े जो जीओसीएनसी होते हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, इनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। ऐसा ही आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पति को नहीं पता चले, पत्नी को नहीं पता चले, मेरे दाहिने हाथ की बात अपना देखो। शाम को मैं घर आया, अपने परिवार के साथ में बैठ करके मैंने प्रार्थना किया कि नहीं, रात में अपना निजी ध्यान जप करके सोया तो कितना बजे सोया, एवरीडे सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली रेगुलरली विदाउट फेल विथ इंटरेस्ट। ये मैं नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि कहते सतु नैरंतर्य दीर्घकाल पर्यंत सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, इट शुड बी एवरीडे सिस्टमेटिकली प्रतिदिन पद्धति से वैज्ञानिक रूप से अपने आप का अंत पृथक्करण, इसका नाम तो स्वाध्याय है। हम कुछ बोल दें, आप कुछ सुन ले, आप दूसरे को सुनाए, वो तीसरे को, वो स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय का अर्थ ही होता है स्व का अध्याय, स्व माने आत्मा, आत्मा का पृथक्करण, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को ठठोलो, अपने आप को देखो, मैं कहां हूं, मैं कहां जा रहा हूं। बड़ा मुश्किल होता है ये। वो संत हैं, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं कि वो जो मंत्रियों के घर में जाता है, वो तो गवर्नर के घर में जाता है और सोचता है कि मैं स्वर्ग में भी ऐसे जा सकता हूं। अरे नहीं जा सकते, नहीं, क्योंकि मौत है ना, वो रिश्वत नहीं लेती है ना, रिश्वत और कोई भी ले सकते है, मौत नहीं लेती है। अपने जीवन कैसे जिया है, कल शाम हमारे एक बहुत अच्छे बहुत प्रेमी दोस्त है, उनकी मौत हो गई। सवेरे फोन आया था कि इनको लकवा मार गया है, तो उनको हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पत्नी से बात किया, उनका बेटा है उससे बात किया, देखा वो उनसे बात, हाँ स्वामी जी बात किए, वो तो बार बार बोल रहे मैं हॉस्पिटल में नहीं, मुझे घर ले जाओ। मैंने कहा जब कह रहे हैं तो घर लेके जाओ ना, समझे लकवा मार गया है, आधा शरीर है, काम नहीं कर रहा है, घर में पढ़े लिखे सारे डॉक्टर हैं, हमारी बीबियां डॉक्टर हैं, ऐसी अवस्था में घर में हमारी मां करेगी क्या, वो पति पत्नी अकेले रहते हैं, हम लोग कहीं अलग अलग रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं, वो कह रहा है तो उसको घर लेके जाओ। वो नहीं माने, नहीं माने, किंतु दोपहर को 3 बजे फिर उनका फोन आ गया, समझी पापा बहुत चक्कर। हमने कहा कुछ मत करो, घर लेके जाओ, इट इज हिज ओनली डिजायर। और 4 बजे वो मर गए, बहुत सज्जन था, डॉक्टर था खुद, साइकिल में जाएगा, घर घर में जाएगा। हमारा मंथली जर्नल है, हमारा मैगजीन है दिव्य जीवन, उसके पहले 100 रूपये लगते थे, अब 150 रूपया लगते हैं। हम तो कभी बाजार जाते ही नहीं, हम यहां आए अभी 8 दिन हो गया, मैंने आपके घर के सामने नहीं गया, चौपाटी भी नहीं गया, क्या जाने की रुचि कोई नहीं है। मगर ये बंदा है हर घर में जाएगा, वो छोटी छोटी दुकानों में जाएगा, वो नहीं सोचता है कि मुसलमान है या हिंदू है, उनको बोलता है देखो मैं डॉक्टर हूं और मैं योगा अभ्यास सिखाता हूं, आओ ना फ्री सिखाऊंगा, किंतु मेरे को आप है ना साल में 1 बार 100 रूपया दे देना हमारी मैगजीन। अरे वो जमीन पर बैठ के जो ताला चाबी रिपेयर करता है ना, उससे भी 100-100 रूपया लेके आएगा, कहते व्हाट अ वंडरफुल सोल दैट ही वाज। और कितने सारे मुसलमान लोग हैं, एक मुसलमान तो ऐसा है 5,000 रोजा हो गया उसका, 5,000 रोजा, माने सवेरे 3 बजे से शाम को 6 बजे तक वो पानी तक नहीं पीता, वो उनका चेला है। क्या बात है, तो ये हमारे जीवन की जो अंतिम यात्रा है, तो उसका जोड़ कहां होता है, हमने कैसे जीवन जिया है, हमारे जीवन की रेखा क्या है, हमने जीवन को सरलता से जिया है, छल से जिया है, कपट से जिया है, यू हैव टू पे फॉर इट। मृत्यु है हमारे जीवन के कर्मों का जोड़ है, मृत्यु के समय पता हो जाएगा हमने कैसा जीवन जिया। लोग तड़पते हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक थे स्वामी भुवानंद जी महाराज, ध्यान में बैठे रोज जैसे बैठते नर्मदा के किनारे, उनका माछी मारे एक भगत था, वो कहा ओम स्वामी जी चाय का समय हो गया है, ओम स्वामी जी, वो 3:30 बजे के बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, अब 5 बज गए, ओम स्वामी जी, वो हाथ लगाया तो प्राणी नहीं था, जिस आश्रम में मैं खुद रहता हूं, शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में, उनकी स्थापना कौन की? एक बैंक मैनेजर थे, संन्यास लेके रहे, किंतु जीवन इतना पवित्र था, जो उनको पैसा देंगी सरकार तो जेब में डालेंगे, किसी ने मांगा तो बिना देखे दे देंगे। व्हाट ए ग्रेट सोल, नाम था पवित्रानंद। एक दिन शाम को सत्संग में बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोगों ने कहा स्वामी जी 6 से 7 सत्संग होता है ना, हाँ 7 बज के आप बंद भी करो। अरे क्या भगवान के नाम में क्या बंद करना है, चलो मैं कीर्तन करता हूं। शंभु शरणे पड़ी दर्शन आप, ऐसा करते थे, दया करी दर्शन जीव, बोलते बोलते ही प्राण चला गया। उनके जीवन की रेखा सीधी है, जीवन में छल नहीं है, जीवन में कपट नहीं है, जीवन में दंभ नहीं है। उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट, उनको कुछ पता ही नहीं है। कैसे पता नहीं कैसे हो सकता है, उनको यही पता है मैं राम का हूं, राम मेरा है, आई एम दाइन दाउ आर्ट माइन। तो क्या कहा है, लंबा हिसाब, अपने जीवन का हिसाब क्या करेंगे, हमारे जीवन का हिसाब यही है। प्रिय अपने आप को देखो, कोई भी कार्य करते हो तो सोचो इसके रिपल्स कहां तक जाएंगे। एक शांत तालाब होता है, उस तालाब को थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा पानी को ऐसे करना, वहां से तरंगे उठेंगे, दूर तक चली जाएंगे। जर्मनी का एक बहुत सुप्रसिद्ध एक तत्व चिंतक है सैम्यूल कांट, वो हमेशा कहते हैं यू कैन नॉट प्लक ए फ्लावर इन योर ओन गार्डन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टार इन द हेवन। अगर आप अपने बगीचे का भी फूल तोड़ते हो, स्वर्ग के तारे हिलते हैं। हमारे संबंध समाज से ऐसे बने हुए हैं, हम क्यों अपने आप को स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, हम क्यों अपने आप को क्या बोलते हैं घमंडी होते हुए चले जा रहे हैं। अरे करुणा रखो, प्रेम रखो, क्षमा रखो, उदारता रखो। किंतु रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं एक थोड़ा ध्यान रखना, हाँ हिस बट डोंट बाइट। कभी कभी आप कुछ ऐसा नहीं किया तो भी गुजारा नहीं चलता है, फुत्कार तो रखना पड़ेगा, फुत्कार नहीं रखे तो गुजारा नहीं होता। काटो मत, कभी 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 मौका पड़े तो डांटो, मगर काटो मत। डांटो तब भी क्या, ऊपर ऊपर से, अपने दिल में कुछ नहीं होना चाहिए, अपने दिल में तो प्यार ही होना चाहिए, क्या करेंगे, उसकी समझदारी कितनी है। वो तो समझदार जितना है उसकी बुद्धि उतना ही काम करेगा, उससे थोड़ा ज्यादा करेगा, उसको प्यार दो। किंतु हे ऐसा कभी त्रिकट धा बोलना पड़ता है, ये तानपुरे बजते हैं ना, तानपुर को भी कसना पड़ता है, ये तबला बजता है उसको भी ठोकना पड़ता है, और जब तबला ठोके नहीं तो मधुर बजे नहीं, तानपुरा कसे नहीं तो मधुर बजे नहीं। तो ऐसे ही लोगों के साथ में काम करने पर हमेशा नरम नरम रहे तो काम नहीं होता है, किंतु अपने दिल में, अपने भीतर में, अपने अंतस्तर में, अपने निजी जीवन में केवल एक, कैसे कि तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुनाम, एक तिनके के समान सरल और पेड़ों के समान सहनशील, जिसको योग्यता भी नहीं है उसको भी मान दो, किंतु परमात्मा के सुमिरन को ना भूलो। हरेर नाम एव हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव, नाम कोड़े जा नाम कोड़े जा, नीचे नीचे बाहु तुले, दोनों हाथ उठा करके निर्मल चित्त से नाम करते चले जा। मित्र वह है अपना जो अशुभ को स्थगित करते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, इस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, 6ठे अध्याय का 5वां मंत्र। आपका अपना उद्धार आपको ही करना पड़ेगा। आपका मित्र कौन है? आप कैसे कि जो अशुभ विचारों को स्थगित कर दे, अशुभ चिंतन को स्थगित कर दे, मित्र वह अपना अशुभ को स्थगित कर दे, शुभ को कर ले। कल हमने आपसे 2 शब्द कहे थे, फिर से याद दिला देते, बोलिए DIN डू इट नाउ, KIV कीप इन व्यू। जिस विचार से, जिस कार्य से, जिस बोलने से, जिसके करने से किसी को भी लाभ होता है, मेरा नहीं मुझको छोड़ के किसी का भी लाभ, उसी समय करो। किंतु मेरे कोई भी विचार से, कोई भी वाणी से, कोई भी व्यवहार से, कोई भी वर्तन से अगर किसी को भी इतना भी थोड़ा दुख होता है तो उसको KIV कीप इन व्यू, थोड़ा सोचना चलो आज नहीं तो कल करेंगे। बहुत जरूरी बात है। क्या है? आपका शत्रु कौन? आप हैं। आपके मित्र कौन है? आप हैं। अब जब हमारी जो यात्रा है जीवन की, उसमें हमको देखना है कि हमारी यात्रा पूर्व में जा रही है कि पश्चिम में, प्रकाश में जा रही है कि अंधकार में जा रही है, उन्नति में जा रही है कि अधोगति में जा रही है। और कौन लेके जाता है? हमारे ही अपने विचार, हमारे ही अपने संस्कार। ये एक महिला है सन्यासिनी, मुझे फोन करके कही, स्वामी जी हमारे आश्रम में तमाम सन्यासिनी महिलाएं रहती हैं, तो उनको एक को बहुत पाइल्स हो गया है। अब वो सन्यासिनी है, तो आप किसी लेडी डॉक्टर को जानते हैं क्या कि जो उनका ऑपरेशन कर ले? कि जहां तक मेरा ख्याल है सारे सर्जन हैं वो सब पुरुष लोग ही हैं। मैंने कहा लेडी डॉक्टर तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सन्यासी को क्यों पाइल्स होना चाहिए? यह तो बहुत ज्यादा कब्ज से होता है, या तो बहुत ज्यादा मिर्ची खाने से होता है। तो समझिए मिर्ची ही खाती है, बहुत ज्यादा नहीं, मिर्ची ही खाती है। व्हाट डू यू मीन बाय मिर्ची ही खाती है? बोले जेम सिंह चना खाए तेम मिर्चा खाए, ऐसे कटर पटर खा लेती है, हरी मिर्ची है। मैं बोला कभी कभी मिर्ची तो मैं भी खाता हूं, पर मिर्ची ऐसे हरी नहीं खाता हूं, उसको लंबा पेट काट लेते हैं, थोड़ा तेल में भून लेते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ा गुजराती है इसलिए चीनी डाल लेते हैं, तो वो कड़वी नहीं लगती है। तो कभी कभी स्वाद करने के लिए, तब मैं नहीं नहीं स्वामी जी आ तो कच्चा ने काचा जेम भिंडा भरड़ी जाए ते मिर्चा भरड़े। दोष कौन करता है? यही संस्पर्श जहा भोगा दुख यो न ये बते आद्यंतवंत कौन ते नतेशो रमते। जो एक जीव को आनंद देता है वही दुख देता है। भरूच में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए हमें बुलाया गया, अखबार में फोटो छपी, एक महात्मा रहे नर्मदा के तट पर, उन्होंने फोटो देखी तो आ गए, रे तो हमारे अपने प्रिय हैं, चलो चाहे। वो बड़ा डॉक्टर था, उन्होंने सबको पिस्ता की आइसक्रीम का बंदोबस्त किया था। साधारण आइसक्रीम में तो 20-22-25 रुपए का एक कप आ जाता है, किंतु ये तो पूरा 60-60 रुपीज का एक बड़ा कप था। उनका महाराज जी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, एक तो मीठा है ठंडा है, मैं आई ट्राई टू अवॉइड स्वीट, मिठाई नहीं खाना पसंद करता हूं। डायबिटीज क्या? अरे नहीं है मेरे प्यारे, डायबिटीज नहीं है, 100 भी कभी नहीं गया, 80-90 ही रहता है। फिर क्यों नहीं खाते हो? ठंडा है मीठा है, अब शरीर को देखो, नहीं खाए तो ठीक। तो महात्मा जी बोले आप ले हो ना मुझको देना। तो डॉक्टर ने कहा महाराज जी मैं इनको दो दूंगा, आप तो लीजिए। तो वो जो करुणानंद स्वामी जी रहे तमिलनाडु के थे, रासीपुरम सेलम के, उन्होंने दो कप अपना खाया, मेरा कप से मैंने एक इतना मुंह में लगाए थे वो भी खा लिए। बताया नहीं कि उसकी फास्टिंग शुगर 500 से ऊपर रहती है, इसके ऊपर में 3 आइसक्रीम खाए 750 शुगर हो गया, ब्लड डिसेंट्री हो गया, इवेंट ने कोमा, 7 दिन तक कोमा में चला गया। अब मेरे को सारा प्रोग्राम पोस्टपोन करके बैठना पड़ा। क्यों भाई? दीपक प्रज्वलन करके हॉस्पिटल का उद्घाटन हमने किया है और भर्ती होकर के इसने किया है, अब ये मर जाएगा तो बोले कि उद्घाटन में एक बंदा यहां मरा है, वो भी साधु मरा है, तो उसके हॉस्पिटल बदनाम हो जाएगी। मैं रोज बैठ के उसके सिर में जप करता रहा, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे। ये बंदा चलता फिरता घर चला जाए, बाकी घर में जाके मरे चिंता नहीं, यहां ना मरे। वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा महात्मा जी कैसे बोला और मपड़ी रखे है, शरीर ठीक है? हाँ ना ले रखे, अभी ठीक है। क्या ठीक है? ये क्या किया? बोले बचपन से ही साधु बना, सभी आश्रम में कोठारी बनता हूं। हाँ अड़दिया थाए तो बदा लोग बेखाए तरण खाए, मैं डब्बा भर के अपने बिस्तर के नीचे रखता हूं, 2 TDS, 2 सवेरे 2 दोपहर को 2 शाम को, 12 महीना ये गोली बाड़ा गोली खावानी टेव छे। हाँ लड्डू है, बर्फी है, पेड़ा है, कुछ भी है, सुबह दोपहर खा। ठीक क्या यही संस्पर्श चाह होगा? हम कहते हैं आत्म संयम करे, क्या जिस इंद्रिय जन्य सुख उपभोग से हमें आनंद होता है वो हमें को दुख दे रही है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं योग तो मंगल है, अर्जुन तेरा मंगल मेरा मंगल सभी का मंगल हो रे, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। योग का अर्थ ही मंगल है, चाहे अमंगल है वो तो योग नहीं। योग का अर्थ ही मंगल होता है। किसका अहित करना आशा ने ध्यान दे, किंतु आत्मा स्वतंत्र है। किसका अहित करना बहुत आसान है, अहित करना आसान क्योंकि गड्ढे में उतरना है, किंतु ध्यान दे हित करना कठिन है क्योंकि पर्वत के शिखर पर चढ़ना है। जो अपना मित्र बन जाए वह जीवन में मुक्ति को अनुभव कर पाता है। जो इंसान खुद अपनी दोस्ती करे, कल हम आपसे बात करते रहे, यही करते रहे कि आप दुनिया भर से अपॉइंटमेंट लेते हो, अरे अपनी अपॉइंटमेंट लो, फाइंड आउट सम टाइम फॉर द सेल्फ, अपने लिए तो थोड़ा समय निकालो। अपने लिए समय निकालना क्या है, शांति से बैठना सीखो, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी सुनना नहीं, अपने आप को देखना आपके भीतर में क्या हो रहा है। इतनी उथल पुथल होती है, कितने हिसाब चुकते करने हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों से क्लेश करना है, किंतु फिर भी आपको अपना मित्र तो बनना ही पड़ेगा जीवन में, अगर मुक्ति की चाहिए तो, मुक्ति की प्राप्ति करना है तो। लेकिन जो अपना मित्र बन गया बस बेड़ा पार है, किंतु अगर शत्रु बन गया तो बंधन बंधते ही चले जाएंगे, जाल में आप फंसते ही चले जाओगे। कृष्ण परमात्मा इस सूत्र से क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं थोड़ा रुक के चलो, हे मन समल समल पग भरिए, थोड़ा रुक के चलो, हड़बड़ मत करो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे पियो, शांति से सोचो, तब जाकर के निर्णय लो। ये हमारे उत्क्रांति की लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी जहां होती है वहां भी थोड़ा एक रिसर्च होता है, अपने आप का रिसर्च करना है। कृष्ण उन लोगों में से नहीं कि कोई शब्द व्यर्थ कहे, ये 700 श्लोकों में उन्होंने एक बात, कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र ये व्यथा नहीं कहा है। कहीं से भी स्पर्श करो वो हमारे जीवन के अंदर एक प्रेरणा और प्रेरणा, शब्दों का आडंबर नहीं है। कृष्ण के इन तमाम मंत्रों में ये जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलम बलम विताम भुजंग तुंग, वो शब्दों का आडंबर है, शब्द रचना है वहां पर, किंतु यहां नहीं है। तमाम श्लोक उद्धरेत आत्मन आत्मानाम, आत्मा का उद्धार आत्मा ही करेगा, आत्मा ही आपका मित्र है, आत्मा ही आपका बंधु है, आपका ही आत्मा रिपु, सीधा लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं कहा। क्या कहा कि जो जो राजनीतिक नेता नहीं है कृष्ण ना, वो बोले कुछ मन में कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं राजनीतिक नेता नहीं है, क्या कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, राजनीतिक नेता नहीं है। ये राजनीति अलग होती है, सामने बोलने के अलग होती है, पीछे बोलने के भी अलग होती है, और ये गलत बात है, नहीं है। और कृष्ण उतना ही कह रहे हैं जितना अत्यंत आवश्यक है, प्रयोगात्मक है उनके सारे व्यक्तित्व। अब जीवन में अगर हमको प्रयोग करना है तो फिर हम क्या करें, एक मंत्र पर एक विचार करेंगे कि धीरे धीरे हम पूरी गीता पढ़ें। अब देखिए बार बार जब गीता को पढ़ो तो क्या करना बताए, हमने रोज पढ़ रहे हैं कि श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, सुनो। वो गाय जब खा लेती है तो बैठने के बाद में जुगाली करती है, ऐसे आप बड़े भाग्यवान हैं, इतने इतने दूर दूर से आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, ये एक एक घंटा आपको यहां आने के लिए लगता है, बोरीवली से, दहीसर से, कांदीवली से आ जाते हैं, किंतु फिर जब आप वापस जाएंगे थोड़ा शांति से, ट्रेन में एक घंटा तो बैठना ही पड़ता है आपको, क्या क्या बोला है, क्या क्या सुना है, उसमें मैं कहा हूं, अपने आप को पृथक्करण करो, आपके सामने एक नया प्रकाश खुल जाएगा, एक नई गीता आपके भीतर खुल जाएगी। खुलने की चाबी है ये प्रेमपुरी महाराज ने दी आपको, बड़े भाग्यवान है, इतने वर्षों से सुबह दोपहर शाम ये महात्माओं के प्रवचन होते रहते हैं, स्वाध्याय होता रहता है, कोई बड़े बड़े आश्रम होते हैं वहां पर भी ये वेदांत की चर्चा नहीं होती है, कौन पढ़ाता है आजकल, किंतु भगवान हो कि एक इस मंत्र को समझे, एक मंत्र, मेरा मित्र मैं हूं, मेरा शत्रु भी मैं हूं, मैं मेरा मित्र बनूं, और इस छोटे से अगर कथन को छोटे से एक प्रस्तुति को अगर आप दिन में दो तीन दफे चार दफे अगर थोड़ा जुगाली कर लेंगे, कदम कदम पर आप पाएंगे कि आप अपने मित्र कम दुश्मन अधिक हैं। यू रियलाइज इट, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ये। हम जो अपने जिस ढंग से जीवन यापन करते हैं, पूछो अपने आप को, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके घूमने में, आपके बोलने में, सवेरे से शाम तक जो घटनाएं घटती है, हाँ करते हो, हाँ जिन गुजराती में सुखे क्षण को करीने बात करें, सीधो बात करीने बात कर। नो ट्राई टू बी कीप काम, थोड़ा शांति से, आग लगी तब भी शांति से बात करो। क्या करते हैं, हड़बड़ करने से क्या होता है, किसके मृत्यु हो गई तो उसके ऊपर में पटक पटक के रोने से क्या होता है, शांत रहो। हाँ सोचो अब क्या करना है, यही बात है। आपकी स्वतंत्रता में रत्ती भर कमी नहीं है। यू आर टोटली फ्री टू डिसाइड टू द गुड ईस्ट टू द वेस्ट। आप स्वतंत्र हैं पूरे अपने जीवन में कि मैं प्रकाश की ओर जाऊं कि अंधकार की ओर जाऊं। एक ही चाबी है, दरवाजा खुल भी सकता है, दरवाजा बंद भी हो सकता है। द बॉल इज इन योर ओन कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड। अपने जीवन में एक संकल्प करो, जीवन का हेतु क्या है, हमने यहां सत्संग में आते हैं, क्या पाथे लेके जाते हैं, सुबह सुबह क्या करना, घर में खटपट होती है, स्वामी जी हाँ मैं तो उठ के यहां चली आती हूं, हाँ वो लड़का है, बहू है, सवेरे से त्रिगड़ धा करते रहते हैं, बच्चों को स्कूल में जाना है, मैं यहां जाऊं शांति हो गया, वो जब चले जाएंगे, सवेरे मैं गीता में भी बैठती हूं, बाद में स्वाध्याय भी करती हूं, और जब स्वाध्याय पूरा हो जाए 9:30 बजे 10 बजे घर तक पढ़ू, शांति, बेटा भी गया, बहू भी गई, बच्चे भी गए, शांति, दिन भर शांति रहती है। और फिर जब उनका आने का मौका होता है, फिर मैं प्रेमपुरी आ जाती हूं, प्रेमपुरी को धन्यवाद तो बोलो, घर के खटपट से आपको बचाए। लोग हमको कहते हैं स्वामी जी ये आप इतना कुछ बोलते रहते हो, लोगों को क्या कल्याण है, उनका बहुत कल्याण होता है, जिनके घर में बहुत गर्मी है, घर छोटा है, वह लंबा होकर के पिछली बेंच में बैठकर एयर कंडीशन में वो सो तो सकता है, हाँ यहाँ मच्छर नहीं है, खटमल नहीं है, कोई जगाने वाला नहीं है, और यहाँ शौचालय भी बड़े अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, घर में नहीं मौका तो यहाँ प्रेमपुरी ने तो सब तरफ से आपका कल्याण किया है। सोचना अपने आप को कि मेरी दिशा कौन सी है। मैंने कल क्या कहा, वो मंडन मिश्र है, वो कहाँ रहते हैं, इसे शंकराचार्य जी ने पूछा, लोगों ने कहा जिनके घर के सामने तोता मैना अगर वेदांत चर्चा करते हैं तो उन्हें प्रेमपुरी कहाँ है, जिनका लिफ्ट मैन भगवान भी बोले अपनी सोच को बदलो अपना जीवन अच्छा हो जाएगा, भगवान ऐसा बोलता है, कल बोल रहा था, अरे अपनी सोच को बदलो अपना जीवन बदली हो जाएगा, व्हाट ए वंडरफुल थिंग। अपनी सोच को बदलो, अपने मित्र हैं या शत्रु, हमको एक एक चरण पर एक नया स्वर्ग हम बसा सकते हैं, अपने एक एक कदम पर हम एक नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, किंतु कदम किस दिशा में उठाए ये हमको सोचना पड़ेगा। आइए आगे वाले मंत्र को पढ़ते हैं। छठे अध्याय का छठा मंत्र है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मनाजितः ये नात्मैवात्मनान् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्मात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मनाजितः ये नात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वत्रैता। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। देखो ध्यान दें, मन और इंद्रिय सहित शरीर को जीता गया है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके आप शत्रु के समान हैं, शत्रुता के जैसे व्यवहार भी करेंगे। इंद्रियां और शरीर को जिसने जीता है वो अपना मित्र हो जाता है, और जिसे इंद्रिय और शरीर का कोई वश नहीं न इंद्रिय परवश है, न शरीर परवश है, काबू नहीं है, वो अपने आप का शत्रु। कुछ पहले मंत्र में जो कुछ कहा उसकी पूर्ति के लिए ये हो सकता है। मित्रता और शत्रुता को दूसरे आयाम से समझें। ये दूसरा आयाम क्या है? शरीर और इंद्रियां जिनकी परतंत्र है। एक विनोद की बात कहेंगे। एक पुरुष है, वो आप लोगों को तो पता है घर में क्या सब होता है। तो उनकी पत्नी है, बहुत उनको मुश्किल करती है। पुरुष तो बहुत बड़ा आदमी है अपने बिजनेस में, किंतु पहले ही दिन शादी करके आई तब से पत्नी हाथ में झाड़ू उसको दिखाती है। वो बड़ा मुश्किल में है। तो फिर वो पत्नी झाड़ू दिखाए तो दिखाए, किंतु पूरे मोहल्ले में उसकी दाग थी कि ये अपने पति को बिल्कुल गुलाम करके रखी हुई है। तो मोहल्ले की स्त्रियां बोली, हमने सब सुनते रहते हैं, सही बात क्या? सही बात है, आना मेरे घर में और छुपके छुपके रहना, और शाम को आए तो देखना क्या हाल होता है। तो उन सब महिलाओं को, 20-25 महिलाओं को इधर उधर उधर छुपाए। वो आने के साथ, खबरदार जूते निकाले तो बैठ, पलंग में बैठ। वो बेचारा बैठ गया, पलंग के नीचे घुस घुस गया। अब दूसरी तरफ से बाहर निकल। इसने सोचा, अच्छा मौका है कि बाहर ना निकलूं, अगर मैं बाहर निकला तो पीटा जाऊंगा, गाली भी और पड़ेगी, मारपीट भी होगी, मगर नहीं निकलूंगा। वो नहीं निकला। निकलता है कि नहीं? वो कुछ बोला ही नहीं, वो चिल्लाती रही। वो सारी मोहल्ले की लड़कियां बोली, रे तू क्या दम मारती है, देख वो तेरी बात सुनता ही नहीं, वो लोग चली गई। ये हमारी इंद्रियां ऐसी है, इंद्रियां अपनी इच्छा से डांटती हैं, अपनी इच्छा से समझती है कि मैं ही मालिक हूं। अपने आप को थोड़ा अलग कर लो, तुम क्या कहती हो, कहती रहो, मैं सुनता ही नहीं। एक मकान है, मकान का जो मालिक है वो घर में नहीं है, कहीं यात्रा में गया। घर में तो 10-12 नौकर चाकर है, तो कोई भी आए तो लोग क्या कहते हैं, मैं मालिक हूं, बोलो क्या काम है। हर नौकर ऐसा बोलता था, मैं मालिक हूं, और मैं मालिक हूं ऐसे कहते रहे कहते रहे कहते रहे। कब तक कहते रहे? जब तक मालिक वापस नहीं आया तब तक कहते रहे। तो 2-4-5 महीने के बाद एक दिन मालिक वापस आ गया। जो गेट पर खड़ा था नौकर, महाराज जी आइए आइए, बहुत दिन में पायलांगो जयराम जी की। फटाफट तमाम नौकरों को पता हो गया, तमाम नौकर आके प्रणाम करने लगे, पांव छूने लगे। घर में आप नहीं हैं तो सारे नौकर मालिक हो जाएंगे, घर में रहेंगे बस नौकर नौकर बन जाएंगे। ये आपका घर है, और आत्मा जो है उसको मालिक है। जब आत्मा घर में नहीं रहेगा बस इंद्रिया मालिक हो जाएंगी। एक भागवत कथा आपने सुध में सुनी है कि जब कृष्ण का गोकुल में आगमन हुआ, ध्यान दे शब्द, कृष्ण का गोकुल निवास में नहीं महाराज, क्योंकि ये गोकुल निवास के मालिक यहां बैठे हैं। कृष्ण का गोकुल में आगमन हुआ तो नंद गोकुल को छोड़कर के मथुरा गए। ये कहानी सुनी कि नहीं? उसमें कोई शब्द में फर्क नहीं है। कृष्ण का गोकुल में आगमन हुआ तो नंद गोकुल छोड़कर के मथुरा गए। तब पूतना आधम की और पूता नयती थी, बच्चों को लेके जाने लगी और मारने लगी। अभी इसको समझो, गोकुल, गो नाम इंद्रियाणा नाम, गो कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियाणा नाम समूह इति गोकुला, इंद्रियों का जो समूह है वो गोकुल मानिए शरीर। इस शरीर में जब आत्मा नाम के कृष्ण का प्रागट्य होता है तो नंद नाम का जीव इस आत्मा को छोड़कर के कहां जाता है? मथुरा। मथुरा क्या है? वो भोगपुरी है। मथुरा क्या है? लास वेगस। लास वेगस समझते हैं आप लोग? अमेरिका में एक बहुत बड़ा शहर है जहां केवल वो जुआ नगरी बोलते हैं, जुआ वो जुआ खेलने का ही नगरी है, जुआ खेलो शराब पियो। जैसे कि हमारे यहां कोई मंदिर का कोई भवन का उद्घाटन हो तो नारियल फोड़ते ना, तो वहां ये ऐसे लॉस वेगस में कोई नया जुआ घर खुलता है तो घड़ी को उठा के फोड़ते हैं। क्यों? अभी घड़ी मत देखो, जितना खेलना है जुआ उतना खेलो, ये उनका नियम ऐसे होता है। लॉस वेगस क्या है? जुआ का घर। ऐसे मथुरा भी यही था, भोगमय नगरी है। अब नंद है, जीव है, घर में आत्मा है, परमात्मा का प्रागट्य है। आत्मा को छोड़ करके नंद जीव अनात्मा में जाता है। आत्मा सुख है, अनात्मा दुख है। आत्मा शाश्वत आनंद का घर है, अनात्मा चिरंतन दुख का घर है। आत्मा में क्या है? ज्ञान है, प्रकाश है, विकास है, शौर्य है, धैर्य है, औदार्य है, तेजस है, प्राज्ञ है, चेतना है आत्मा में। अनात्मा में क्या है? दुख है, क्लांति है, क्लेश है, अंधकार है, यातना है, पीड़ा है। अब जब आप आत्मा को छोड़ करके अनात्मा में जाएंगे तो फिर दुख को तो प्राप्त होना है। पूर्व को छोड़ के गए तो पश्चिम ही जाओगे, प्रकाश को छोड़ के गए तो अंधकार को ही जाओगे, उन्नति को छोड़ दिए तो अवनति को जाओगे। हाई टाइड नहीं है तो लो टाइड ही है, पूर्णिमा नहीं है तो अमावस्या होनी ही होनी है। क्या कहा गोकुल को? इस देह में रहे हुए आत्मा में जीव को स्थापित करो। भगवद गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंस्थो, मन को आत्मस्थ करो। स्वस्थ बोलते ना, आप स्वस्थ हैं क्या? स्वस्थ का मतलब क्या हुआ? स्वस्थ का मतलब मैं बीमार नहीं हूं, मेरे को सिर दर्द नहीं है, कमर दर्द नहीं है, सर्दी जुखाम नहीं है, उधरस भी नहीं है, सब ठीक है पेट में। उसको स्वस्थ नहीं बोलते, उसको निरोगी बोलते हैं। स्वेतिष्ठते, जो स्व आत्मा में रहता है वो स्वस्थ है, जो अनात्मा में नहीं रहता है, जिसका मन बाहर नहीं भटकता है, जिसका मन अंतस्तर में है, जिसका मन अपने में है, आनंदोहम, उसको आनंद के लिए कोई चाट पकौड़ी नहीं चाहिए, उसको आनंद के लिए संगीत नृत्य नहीं चाहिए, कुछ भी देखे नहीं, कुछ भी सुने नहीं, कुछ भी बोले नहीं, फिर भी आनंद में रहे, मस्ती में रहे, एकदम चिंतन में रहे, कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने राम रस मीठो रे मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, पिए मीरा बाई, दास कबीरा भर भर पिया, और पीबन की आस राम रस मीठो रे मेरे भाई। शाकर ने शेरड़ी नो स्वाद तजी ने कड़वो लिंबड़ो घोड़मा, रे राधा कृष्ण विना बीजू बोलमा। एक बार उसका स्वाद आ गया, एक बार जिसने गाय के असली दूध को पी लिया है उसको पाउडर के दूध में, भैंस के दूध में स्वाद नहीं आएगा। मुझे बात बताएं, आपको पता है अमेरिका में एक भी भैंस नहीं है? खबर से तुमने, अमेरिका में एक भी भैंस नहीं है, सब गाय ही गाय है, और इतनी अच्छी अच्छी गाय है, वो गाय का दूध पीते हैं। और हमने ये आपका ये दही सर और क्या क्या है ना, वो समा तबेला कितना है, सब भैंस का तबेला है। ये बंबई वाले लोग केवल भैंस का दूध पीते हैं, मुंबई नहीं है, भारत में लोग भैंस का दूध पीते हैं, गाय का दूध कहां पीते हो? हाँ, भैंस का दूध किसके लिए? पाड़ा के लिए होता है। पाड़ा कौन होता है? वो यम का वाहन होता है। नारायण नारायण, जो अपने मौत के देवता को अपने ऊपर बैठा है उसको बोलते हैं पाड़ा। वो पाड़ा है, वो कौन सा दूध पीता है? भैंस का दूध पीता है। जो भैंस का दूध पिएगा, पाड़ा के जैसी बुद्धि और मौत के देवता को सिर में बैठा के घूमेगा, गाय का दूध। तो क्या कहते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन की गति दिशा है उसको अपने आप को ठठोलना है। वो क्या कहते हैं, शरीर और इंद्रियां जिनकी परतंत्र है, जिसकी इंद्रियां कुछ कहती है, जिसका शरीर कुछ कहता है, इंद्रियां कुछ कहती है, शरीर कुछ कहता है, जिनका मन कुछ कहता है, स्वयं की कोई आवाज नहीं है। इंद्रियों की कोई आवाज है, मन की कोई अलग आवाज है। और मुझे बात बताएं, अगर आप थोड़ा एक कदम दहिना चले, एक कदम बाएं चले, एक कदम आगे चले, एक कदम पीछे चले, तो आप कहां गए? वही के वही है नारायण। तो ये इंद्रियां कुछ कहती हैं, मन कुछ कहते हैं, शरीर कुछ कहता है, और सबकी सुनते हो और करते कुछ नहीं, तो वहीं के वहीं हो। सब कुछ करो, पागल हो जाओगे। अब कभी क्या आपने ख्याल किया है कि आपकी इंद्रियां एक दूसरे के विपरीत मांग करती है? ये इंद्रियों में भी तालमेल नहीं है, इंद्रियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए बोलते हैं, हाउ वो ओल्ड टेस्टामेंट ने कहा, हाउ यू थिंकत सो यू स्पीकत, जैसा सोचते हो वैसा बोलो। ओ, संस्कृत में भी है, यद मनसी तद वचसी तद कर्मणि, जो मन में है वैसे बोलो वैसे करो। मन में कुछ बोलता कुछ करता कुछ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ, वो बीबीसी कल हमारे कमरे में आए, बांके बिहारी चौधरी, तो मैंने कहा भाई तुम कैसे गिर गए? तो बोले मैं सीढ़ियां उतर रहा था और किसी से बात कर रहा था, बात करते करते एक सीढ़ी छूट गया तो गिरा, ऐसे बुरी तरह गिरा, दो चार मिनट तो होश ही नहीं, लोगों ने उठाया बिठाया, किसी को वो उमा माता जी को कहीं लेके जाना था तो वहां फिर लेके गया, उनको पहुंचाया भी, छह दिन टैक्सी भी चलाता रहा, फिर देखा पांव बहुत सूज गया है, तो फिर मैंने ट्रीटमेंट कराए, 500 600 400 रुपया पता नहीं क्या भी, 400 450 में करा लिए। तो क्यों भाई, जब तुम सीढ़ी उतर रहे हो तो सीढ़ी को देखो, देख रहा है उधर, चल रहा है उधर, फिर किसको प्रेमपुरी को क्यों दोष देते हो भाई? प्रेमपुरी की सीढ़ी से गिर गया, बड़ा मुश्किल काम है, प्रेमपुरी को थोड़ा दोष देना है, अपने जीवन को ठटोलो। एक लड़की है, कोई लड़का से प्यार करती थी, जैसे होता है, लड़का है वो तो शादीशुदा था, उसको पता नहीं, पता हो गया कि वो शादीशुदा भी है, उसके तो दो बच्चे भी हैं, लड़की को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा, तो क्या क्या उसने झेर खा लिया, तो झेर खा लिया, तो फिर उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता था उसकी दोस्ती हो गई, अब उसके साथ में दोस्त हो गई, वो अच्छी तो हो गई, अब दोनों मिलकर के शिवानंद आश्रम, हमारे आश्रम के बेंच में आके बैठते थे। हमको क्या पता भाई, जितने लोग दर्शन करने आते हैं वो इतनी सारी बेंच लगी तो लोग वहां बैठते हैं, तो ये भी बैठते थे, हमको क्या पता। एक दिन वो जब रात में जाने लगे, 9 बजे तो जाना पड़ेगा, जाने लगे, किसी लोगों ने घेर लिया उनको और उनकी गाड़ी भी छीन ली, लड़की को तो छोड़ दिया, वो डॉक्टर को अपहरण कर लिया, वो लड़की गई पुलिस स्टेशन में, उसके गहने वहने ले लिए थे, पैसे वैसे ले लिए थे, पुलिस स्टेशन में गई, वो क्या बोली, शिवानंद आश्रम की बेंच में हम बैठते थे तो वहां से हम जा रहे थे तो वहां से हमारा अपहरण हुआ, आगे जाके मेरे को उतार दिया, गहने मेरे ले लिए और डॉक्टर को पकड़, साहब कहानी बोल दी वो। और दूसरे दिन में क्या अखबार में आ गया, बड़ा बड़ा शिवानंद आश्रम ना प्रेमी पंखेड़ा पकड़ाया। अरे क्या बोलेगा, और रात में 12 बजे अखबार छपता है तो सवेरे 6 बजे आश्रम में आता है, किंतु अमेरिका में रहने वाले हैं वो रात में 1 बजे पढ़ लेते हैं, हमारा जब रात में 1 बजता है तो उनके यहां तो दिन चढ़ा रहता है, तो रात रात में बोल स्वामी जी तुम्हारा आश्रम में प्रेमी पंखेड़ा पड़ पाड़ो छो, आश्रम में 1200 पेड़ है, 1200 पेड़ है, कोई 39 तरह के पक्षी है। मैंने कहा यह भी पक्षी होगा भाई, मुझे क्या पता है, आई डोंट नो, हूं छापू लाई ने आऊ छो। दांगदरास एक बोले पुराने डॉक्टर हैं, वो अखबार लिखे, देखो हाँ मूढ़ू काड़ू करो, मैं क्यों करूं भाई काला मेरी तो पब्लिसिटी हो रही है, मैं क्या करूंगा। ये पूरा जीवन, अपने जीवन की गतिविधि दिशा क्या है, हम एक ख्याल करते हैं, एक इंद्रियां कुछ मांग रही है, दूसरी इंद्री कुछ मांगेंगी, किंतु कब तक मांगेंगी, जब तक उसका मालिक नहीं होगा तब तक मांगेगी। तो एक बार मालिक हो जाए इंद्रियों की टुकनी है कुछ करे, इंद्रियां अपने अपने काम में भटकती रहती है, अरे कहां सुबह कहां गई, दोपहर को कहां गई, शाम को, मन को खंड खंड करके रख दिया है। इंद्रियां एक दूसरे को पकड़ी हुई है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती है, क्यों, क्योंकि उनके जीवन में यही एक हिस्सा हो गया है। हाँ, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। मैंने सुना कि एक स्कूल में इतिहास पढ़ाने वाले कोई टीचर थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी हुई। एक बच्चा खड़ा हो गया, वो कभी नहीं खड़ा होता था, बोले मेरे माता पिता की लड़ाई। ओ तो बोले नहीं, उससे भी कोई बड़ी लड़ाई होगी, घर जाओ, ना समझ, तुझे इतनी भी अक्कल नहीं है, अभी कोई लड़ाई होती है। टीचर ने इसे कहा ना समझ। तो घर आया बेटा, पिताजी से बोला, क्या बोलता है, पापा आज टीचर है, उन्होंने मेरे को पूछा सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी होती है। मैंने कहा मम्मी पापा की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। टीचर ने मेरे को डांट दिया, मैं क्या करूं। तो पिताजी ने लंबी चिट्ठी लिखी टीचर को, बताओ अगर हम मियां बीबी की लड़ाई से कोई दूसरी बड़ी लड़ाई हो तो बताना, हम उसको भी जानना चाहेंगे। क्या तत्काल, देखो भाई सब लोग हैं अपनी अपनी ही तुक में है। इंद्रियों का जो विग्रह होता है, इंद्रियों में जो दुराग्रह होता है, उसकी वजह क्या है, आत्मा का वहां नियंत्रण नहीं है। क्या कहा है कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य, आप अपने आत्मा को आपका मित्र बनाओ। येनात्मैव आत्मना जीतः, एक बार जिसने आत्मा को जीत लिया है, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अगर वो अनात्मा में है तो फिर वो शत्रु ही हो जाएगा। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, फिर आप अपने साथ में शत्रु के समान जीवन यापन करेंगे। लड़ाइयां तो होती रहती है, किंतु तमाम लड़ाई, फिर वो राम की हो रावण की हो, तमाम लड़ाई के पीछे एक 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 कारण होता है। कौरव और पांडवों की लड़ाई के पीछे, जैसे महाभारत में नहीं लिखा है, अभी कुछ दिन के बाद में परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्री 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 भागवताचार्य गोविंद देव जी महाराज के द्वारा महाभारत कथाएं होने वाली है। आप याद रखना, उनको पूछना क्या महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी हंसी थी, वो कहेंगे नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। लोगों की तुक है कि एक महाभारत में द्रौपदी हंसी तो उसके पीछे महाभारत हो गया। नहीं, द्रौपदी की तो वहां उपस्थिति ही नहीं थी। द्रौपदी मर्यादा की देवी है, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है, पवित्रता की देवी है, उसका हंसने का प्रश्न नहीं। किंतु श्री कृष्ण के उल्हाना देने पर हे हंसो हंसो, तो भीम हंसा था, भीम हंसा था, उसके साथ के नौकर चाकर हंसे थे। ये तो महाभारत में लिखा हुआ है, ये एक हंसी है थोड़ा सा। दंता केशा नखा नरा स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, हर व्यक्ति का अपना स्थान। दंता दांत, दांत मुंह में ही ठीक है, ऐसे हंसना बंदर करते हैं, नहीं, जरूर होने पर तो हंसना ही चाहिए। हाँ, तो बड़ो चढ़ावी ने बेचवा कोई हेतु नहीं, हंसव जो ये। हाँ बोलिए, खाना आधा करो, बोलो खाना आधा करो, ज्यादा खाना है तो खा लो, कम से कम बोलो तो सही, बोलो खाना आधा करो, पानी डबल पियो, कसरत तीन गुना करो, चार गुना हंसो, पांच गुना काम करो और दस गुना राम कहो। चार गुना हंसो और पड़ोसी की बीबी मर जाएगी तो हमें हंसवा आया चाहिए, फिर जाओगे नहीं, हंसना किंतु बिना मौके के नहीं हंसना। महाभारत जो हुआ है एक भीम के हंसी के पीछे हुआ है, एक कारण है। युद्ध जो होता है इंद्रियों पर निग्रह नहीं होने से युद्ध होता है। इंद्रियां इस तरह आदमियों को खींचती है। तंत्र शास्त्र में मनुष्य को पशु कहा गया है, पशु। पशु कौन होता है, जिसके गले में एक रस्सी बांधी जाती है, पशु। तो ये इंद्रियां जो है उन्होंने हमारे गले में रस्सी डाल करके खींचती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कृष्ण वही कह रहे हैं जो गहरे तांत्रिक की व्याख्या होती है, इंद्रियों पर हमारा काबू नहीं है। एक रथ में घोड़े बंधे हुए हों तो रथ सलामत नहीं रहेगा, अगर उसका सारथी ठीक नहीं हो, अगर लगाम पक्की नहीं हो। अगर लगाम पक्की रहेगी, सारथी ठीक रहेगा, तो घोड़े ठीक रहेंगे तो रथ भी ठीक रहेगा। किंतु अगर घोड़े ही नहीं हो तब तो रथ सलामत है, किंतु सारथी भी नहीं हो और लगाम भी नहीं और घोड़े घोड़े हो तो इंद्रियों के भरोसे तो आप अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते। मालिक है, आत्मा है वो मालिक है। इंद्रियाणि हया नाहु शरीरम रथमे वच बुद्धि तू सारथिम विद्धि। आत्मा जो है वो रथ का मालिक है, शरीर में चलाने वाला कौन है? बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। आत्मा को सलामत रखना है, आत्मा को स्वस्थ रखना है, आत्मा से ही दोस्ती करना है। अगर आत्मा से दोस्ती रही तो हमारा जो रथ है कभी गड्ढे में नहीं गिरेगा, वो ठीक मार्ग पर चलेगा। अपने रथ को सुमार्गे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो इंद्रियों के ये न घोड़े भागे, इनको संयम नियम के घोड़े लगे। संयम नियम से जीवन यापन किया तो मंगल ही होगा। वाणी को विराम देते हैं, आपके 2 मिनट अधिक लिए हैं, इसके लिए क्षमा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। ओम शांति।